ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 207। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुमको यह अंतरोपाख्यान सुनाया है, इसके विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। ऐसे जब तुम विचार कर देखोगे, तब आत्मा में अनंत ब्रह्मांड समाते देख पड़ेंगे। हे रामचंद्र जी, आत्मा में जगत कुछ वास्तव में नहीं हुआ, इससे मिटता भी नहीं, चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त का फुरना अधिष्ठान में लीन हो जावेगा, तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, अद्वैत तत्व में जगत भ्रम से दिखता है। ज्ञानवान की दृष्टि में सदा अद्वैत ही आता है। जगत, मैं और तुम सब चिदाकाश है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही जगत होकर दिखती है। जैसा अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखता है, सो अनुभव रूप ही है, वैसे यह जगत भी चिदाकाश रूप है। यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं, तो भी आत्मसत्ता उनमें अनुस्यूत है और अखंड रूप है। आत्मसत्ता और जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण और भूषणों में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपने ही अनुभव से बहुत विस्तृत होकर जगत भासित होता है, सो अनुभव से इतर कुछ नहीं हुआ। और जैसे समुद्र और तरंगों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म, जगत और अनुभव तीनों में कुछ भेद नहीं। असम्यक दृष्टि से भेद भासता है, सम्यक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता में प्रथम जो आभास हुआ है, वह ब्रह्मारूप होकर स्थित हुआ है। वह चिदाकाश रूप ब्रह्मा है और वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी ब्रह्म सत्ता ने अपने भाव को नहीं त्यागा और ब्रह्मारूप होकर स्थित हुई है। फिर उसने जगत रचा, इसलिए वह जगत भी आकाश रूप है। पर वास्तव में न जगत उपजा है, न ब्रह्मा उपजा है और न स्वप्न हुआ है। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अनंत, अविनाशी, अचेत चिन्मात्र है। जगत भी वही स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश रूप हूं। न मेरे साथ कोई आकार है, न मैं कभी उपजा हूं और न मैं कभी मृतक होता हूं। मैं नित्य, शुद्ध, अजर, अमर, सदा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। मैं अनेक विकारों में भी एक रस हूँ। जैसे स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं, तो भी जागृत शरीर को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ हुए नहीं, आभास मात्र है। वैसे ही जगत की उत्पत्ति, प्रलय आदि क्षोभ में आत्मसत्ता को स्पर्श नहीं होता, अर्थात वह क्षोभ से रहित सदा अनुभव रूप है। जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना, जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसको छिपाया है, वह महामूर्ख और आत्महंता है। वह महापदा के समुद्र में डूबेगा। जिसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय हुआ है, उसको मानसिक दुख कभी नहीं स्पर्श करता। जैसे पर्वत को चूहा नहीं चूर्ण कर सकता, वैसे ही उसको दुख नहीं स्पर्श करता। जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं, उसको शांति नहीं प्राप्त होती। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी शांति नहीं प्राप्त होती। जो अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग कर अपने को देह से मिला हुआ जानता है, वह क्या करता है? चिंतामणि को त्याग कर राग को अंगीकार करना और शुद्ध चिन्मात्र अपने स्वरूप को त्याग कर देह में आत्म अभिमान करना समान है। हे रामचंद्र जी, जीव अनात्म में आत्म अभिमान करता है तब अपने विकारवान अपने को विकारवान और जन्मता मरता मानता है, और जब देह अभिमान को त्याग कर आत्मा को आत्मा मानता है तब न जन्मता है न मरता है, न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न जल से डूबता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि वह निराकार अविनाशी और चिदाकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, यदि चेतन की मृत्यु होती तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता, और एक के मरने से सभी मर जाते हैं, क्योंकि आत्मसत्ता चेतन और सब में अनुस्यूत है, पर एक के मरने से सब नहीं मरते। इससे चैतन्य आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर को काटने से आत्मा नहीं कटता, शरीर के जलने पर आत्मा नहीं जलता। संपूर्ण विश्व भस्म हो जाए तो भी आत्मा भस्म नहीं होता। आत्मा नित्य शुद्ध अनंत अच्युत रूप है, कभी स्वरूप से अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, मैं ब्रह्म रूप हूं, अर्थात सब में अहम रूप निराकार अखंडमय हूं। न मुझको जन्म है और न मृत्यु है, सुख की इच्छा नहीं, न कुछ हर्ष है न शोक है, न जीने की इच्छा है न मरने की। जैसे रस्सी में सर्प और सुवर्ण में भूषण कल्पित है, वैसे ही आत्मा में वशिष्ठ नाम रूप है। मैं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित अनंत आत्मा नित्य शुद्ध और बोध रूप हूं। सबका स्वरूप आत्म तत्व है। जो पुरुष स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं, वे संसार मार्ग की ओर दृढ़ हुए हैं, उनका जीना वृथा है। जैसे लुहार के धोखने से पवन निकलता है, वैसे ही उनका श्वास लेना वृथा है। वे घटी यंत्र की नहीं वासना में भटकते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और सदा तपते रहते हैं। जिनकी आत्मपद में स्थिति हुई है, उनको दुख कभी स्पर्श नहीं करता। यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो, बड़वाग्नि लगे और द्वादश सूर्य तपे, तो भी वे ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। जैसे तृण से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे बड़े बड़े दुखों से भी चलायमान नहीं होते। दुख तब होता है जब आत्मा से भिन्न कुछ भासता है, पर उनको तो आत्मा से भिन्न कुछ भासता ही नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आत्म अनुभव रूप है, क्योंकि यह आत्मरूप है। जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न वस्तु कुछ नहीं होती, वैसे ही सब जगत अनुभव रूप है। जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है। यह जगत तो नाना प्रकार का दिखता है, सो आत्मा में अव्यक्त रूप है और भ्रम से प्रकट दिखता है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से सिद्ध है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से सिद्ध है। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वैसा अधिष्ठान रूप होकर भासित होता है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है उनको वैसा ही भासता है। जिनको परमाणुओं में सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है और माध्यात्मिक सत असत के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चार्वाक म्लेच्छ है जो चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि जो कुछ वस्तु है वह बोध है, इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण, हाथी, गौ, श्वान, घोड़ा, सूर्य आदि में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण है वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुस्यूत देखते हैं। हे रामचंद्र जी, वस्तु तो एक है पर उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ है उसे वैसा ही भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसे भावना करते हैं वैसे ही सिद्धि होती है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसे भावना करते हैं वैसा ही रूप भासता है। हे रामचंद्र जी, बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्मसत्ता ही सारभूत है। जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्मसत्ता ही दिखेगी और फिर उस निश्चय से चलायमान न होंगे। राम जी ने पूछा है, भगवान, सब जगत इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से चलता है, इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। ऐसा कोई बिरला ही है जो जगत में सूर्य की नई प्रकाशता है, नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु में भटकते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ कहता है वह भी विषय रूपी अग्नि से जलता है। जैसे कीड़े अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं, सो वे मेरे मत में दुर्गंध के कृमि हैं। गंधर्व तो मूढ़ है, उनको तो कुछ सुधि नहीं, अर्थात आत्मपद को गंध भी नहीं, वे तो मेरे मत में मृग हैं। जैसे मृग को राग में आनंद होता है वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। विद्याधर भी मूर्ख है क्योंकि वे वेद के अर्थरूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं और वेद के सारभूत अमृत को नहीं जानते, इसलिए आत्मपद से विमुख है। सिद्ध मेरे मत में पक्षी हैं, वे पक्षी की नहीं उड़ते फिरते हैं और अभिमान रूपी पवन के चलने से अनात्म रूपी गड्ढे में आ पड़ते हैं, अपने वास्तव स्वरूप में स्थित नहीं होते। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख की नई प्रीति कर जलते हैं और आत्मपद में स्थिति नहीं पाते। योगिनी भी मत से सदा उन्मत्त रहती है, इससे आत्मपद में स्थिति नहीं पाती। दैत्यों को भी सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्मपद से विमुख है। तुम तो पहले ही से जानते हो, मनुष्य भी आत्मपद से गिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि ग्रह बसाइए। वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते हैं और इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं। पाताल में नाग रहते हैं, जिनका जल में भी निवास है। वे सुंदर नागिनियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वे आत्मानंद से गिरे हुए हैं। निदान जितने प्राणी हैं वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्मपद से विमुख है। सब जातियों में बिरले जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी हैं, उन्हें भी तुम सुनो। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सदा आत्मानंद में मग्न रहते हैं। चंद्रमा सूर्य अग्नि वायु इंद्र धर्मराज वरुण कुबेर बृहस्पति शुक्र नारद कच आदि जीवन मुक्त पुरुष है। सप्तऋषि दक्ष प्रजापति सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन जीवन मुक्त है और भी बहुत मुक्त है। सिद्धों में कपिल मुनि यक्षों में विद्याधर और योगिनी और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद बलि विभीषण इंद्रजीत सारमेय चित्रासुर और नमुचि आदि जीवन मुक्त है। मनुष्यों में राजर्षि और ब्रह्मर्षि नागों में शेषनाग वासुकी नाग आदि जीवन मुक्त है। ब्रह्मलोक विष्णुलोक और शिवलोक में कोई कोई बिरले जीवन मुक्त है। हे रामचंद्र जी, जाति जाति में जो जीवन मुक्त हुए हैं वे तुमसे संक्षेप से कहे हैं। जहां जहां देखता हूं वहां वहां अज्ञानी ही बहुत है, ज्ञानवान कोई बिरला ही दिखता है। जैसे सब जगह वृक्ष बहुत है परंतु कल्प वृक्ष बिरला होता है, वैसे ही संसार में अज्ञानी बहुत है, ज्ञानी कोई बिरला है। हे रामचंद्र जी, सुरमा और कोई नहीं, जिसकी आत्मपद में स्थिति हुई है वही सुरमा है और संसार समुद्र तरना उसी के लिए सुगम है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो विवेकी विरक्त चित्त पुरुष है, जिनके स्वरूप में स्थिति हुई है, उनके राग द्वेष काम क्रोध मोह अभिमान दंभ आदि विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय में अंधकार स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है और जैसे बाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी बाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते, और जो करते भी दिखते हैं सो किसी निमित्त मात्र जानना। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे निरावरण स्थित है। जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल होता है, और कोई पुरुष उनसे उद्विग्न नहीं होता। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भौरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं, सुगंध से उसको संतुष्ट करते हैं, वैसे ही संत जन निहाल कर देते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हेयोपादेय की विधि को भी जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में गर्व की भावना से रहित है। उनमें दान स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता वैराग्य धैर्य शम दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों में ऐसे गुण पाइए वे ही संत हैं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सनावतु सनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।